नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज दिवस के उपलक्ष्य में। ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक पेज, ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पर, और ब्रह्मा कुमारीज के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM पर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर इस कार्यक्रम को आप लाइव देख और सुन पा रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त श्रीनिधि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष प्रस्तुति में। इस पैंडेमिक के समय में हम सब लोगों ने नए नए चैलेंजेस देखे और इन चैलेंजेस को हमने अलग अलग तरीके से इसका निवारण और इसका निर्धारण करने की भी कोशिश की है। हर एक की इन कोशिशों को हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, एक दूसरे के मददगार बने हैं और तब जाकर हम इन सभी समस्याओं को अच्छी रीति से डील करना सीखते आए हैं। इस पैंडेमिक में जिनके एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस रहे हैं, भले वो मानसिक हों या शारीरिक हों, उन सबको ये पैंडेमिक थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग लगा है। ऐसे विषयों पर हमें अक्सर लोगों से राय मिलती रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ, अध्यात्म के क्षेत्र के विशेषज्ञ, मनोरोगों के क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी हमसे मिलते रहे हैं और हमें मार्गदर्शन करते आए हैं। आइए, आज की इस एक घंटे की कोशिश में हम यही करेंगे कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप में एक महामारी का स्वरूप तो ले ही चुकी है, उसके और उसके मानसिक प्रभावों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पैंडेमिक के दौरान जिनकी पहले से मनोस्थितियां या मनोरोगों के वशीभूत या फिजिकल रोगों के वशीभूत अगर किसी के कंडीशंस थे, तो उनके लिए पैंडेमिक खतरनाक क्यों था और क्यों है, क्योंकि अभी भी ये महामारी समाप्त नहीं हुई है। आज हमारे साथ इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू जी हैं, एक सुप्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट जिन्होंने डायबिटीज के निवारण के लिए लोगों को अपना वैद्य खुद बनने पर, अपने स्वास्थ्य की ओर खुद ध्यान देने पर, मेडिटेशन, मेडिकेशन और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की पद्धतियों को लेकर डायबिटीज को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, इसके लिए पायनियरिंग वर्क करते हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं मगर देशों विदेशों में भी डायबिटीज की जागृति के लिए अनेकों कार्यक्रम करके लाखों लोगों तक डायबिटीज के अवेयरनेस को पहुंचाने का काम डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू जी ने किया है। मैं डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू जी का स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब।
थैंक यू, नमस्कार, ओम शांति। मेरे सभी स्वास्थ्य प्रेमी भाई और बहनों, आज सारे विश्व में कोरोना का पैंडेमिक तो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन और एक पैंडेमिक जो बहुत समय से चला रहा है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वर्तमान समय में ये दोनों पैंडेमिक, जैसे डायबिटीज और ये कोरोना, ये दोनों, देयर इज ए अनहोली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी पैंडेमिक, तो वास्तव में एक हम सभी के लिए बहुत बड़ी एक समस्या हो चुकी है। ये समय जो चल रहा है, ये नवंबर महीना, सारे वर्ल्ड में लोगों के अंदर एक जागृति फैलाने के लिए विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज नॉट इनफैक्ट अ सेलिब्रेशन, इट इज ए अवेयरनेस कैंपेन, सभी के अंदर एक जागृति फैलाने के लिए कि जागो, उठो, क्योंकि इट इज अ साइलेंट एंडेमिक और पैंडेमिक। तो इस बीमारी के बारे में सभी के अंदर एक जागृति पैदा करने के लिए 13 नवंबर को हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, परंतु सारा महीना लगभग 130 से भी ज्यादा कंट्रीज में इस वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो हम इस कड़ी में आज वर्ल्ड डायबिटीज डे क्यों मनाया जा रहा है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जस्ट आपको अवगत करना चाहता हूं। देखिए, आज वर्ल्ड में 700 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो चुका है और हर साल उसमें भी लगभग 10 मिलियन ऐड होते जा रहे हैं और हर साल सारी वर्ल्ड में 5 मिलियन ऑफ पीपल आर डाइंग ड्यू टू डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, लगभग आधे करोड़ लोगों का मौत हो रहा है। हर 20 सेकंड में किसी न किसी का एक पैर का एम्पुटेशन किया जा रहा है, तो सोचिए कितनी गंभीर बीमारी है। तो आज ये बीमारी खाली बीमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी बन गया है। डायबिटीज के दवाई और इसके ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि बात मत पूछिए। तो इट इज ए ग्रेट फाइनेंशियल बर्डन फॉर एवरीबॉडी, फॉर द कंट्री, फॉर द फैमिली, फॉर एवरीबॉडी। तीसरी बात है कि ये पिछले कुछ साल के अंदर हम मेडिकल कॉलेज में जब स्टूडेंट थे पढ़ाया जाता था कि इट इज एन ओल्ड एज डिजीज, 60 साल के बाद डायबिटीज किसी को होता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक जनरेशन के अंदर ही अभी टीनेजर्स यंग एज में पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं होते हुए भी बच्चों को हो रहा है। और ये खास एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो हमारे गलत खानपान, गलत जीवन शैली, हमारे सोच विचार में जो स्ट्रेस आ गया है जिसके कारण ये सब हो रहा है। इसलिए आज इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर 1991 में ये वर्ल्ड डायबिटीज डे क्रिएट किया गया था और बाद में यूएनओ के सपोर्ट मिला और सारी वर्ल्ड में आज इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसमें खास WHO का कहना है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का कहना है, लोगों को एजुकेट करो, एजुकेट करो, एजुकेट करो, क्योंकि ये खाली दवाई से ठीक नहीं हो सकती है बीमारी। इट इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर, डायबिटीज इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर, इट कैन बी प्रिवेंटेड एट ऑल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल्स। अर्थात जिसको डायबिटीज नहीं हुई है उसको हम डायबिटीज से रोक सकते हैं, उसको आने नहीं देंगे उसके जीवन में। जिसको डायबिटीज हो चुकी है उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा और जिसको कॉम्प्लिकेशंस भी हो गया है उसका मौत नहीं होगा। हम हर स्टेप में इसको रोक सकते हैं, इट इज सच ए डिजीज। परंतु आज इस बीमारी के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, हमारे गलत खानपान, गलत जीवन शैली, बिल्कुल सिडेंटरी हो गए हैं, हमारे पास इतने विज्ञान के साधन है जिसके कारण लोग गलत जीवन शैली के कारण इस बीमारी का शिकार हो रहा है। इसलिए आज सारे विश्व में लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आज खुशी का विषय है, इसलिए के बारे में देंगे कि मेंटल हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छा प्रीफेस दिया कि आज हम लोग क्यों इकट्ठा हैं और क्यों हम वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि इस बार का थीम है कि डायबिटीज और मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। तो पिछले महीने आज से लगभग एग्जैक्टली एक महीने पहले यानी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था और मेंटल हेल्थ पे जागरूकता लाने के लिए भी लगभग पूरे महीने ब्रह्मा कुमारी ने कार्यक्रम चलाए, अलग अलग टीवी चैनल्स पर, ब्रह्मा कुमारी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जानकारी उपलब्ध कराई गई और लोगों को इसके बारे में सजग कराया गया। हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी का मैं परिचय आप सभी के सामने कराना चाहता हूं। दिल्ली में डॉक्टर अवधेश शर्मा वेलबींग साइकेट्रिस्ट के रूप में और फाउंडर हैं माइंड स्पेशलिस्ट और बेटर माइंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन के। साथ साथ डॉक्टर अवधेश को चेयर रह चुके हैं वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के, इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन के साथ मिलकर इन्होंने अनेक कार्यक्रम किए हैं। इनकी लिखी हुई किताबें भी आपको इस विषयों पर आपको अधिक जानकारी के लिए मिलेगी और साथ साथ जाने माने टेलीविजन चैनल्स पर भी डॉक्टर अवधेश शर्मा जी के अनेकों प्रवचन मालाएं आई हैं मेंटल हेल्थ और वेलबींग को लेकर। आज डॉक्टर अवधेश हमारे साथ हैं, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
धन्यवाद, थैंक यू एंड ओम शांति।
मैं डॉक्टर श्रीमंत की बातचीत को आगे ले जाना चाहता हूं। डॉक्टर श्रीमंत अभी बातचीत खत्म करते हुए इस बात को कह रहे थे कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा एस्पेक्ट है जो डायबिटीज को इफेक्ट करता है। जैसे पिछले महीने जब हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ को सेलिब्रेट कर रहे थे तो इस साल का थीम ये था कि हम सब इन्वेस्ट करें मेंटल हेल्थ के ऊपर, हम सब जागरूक बने, अपने आप को भी इन्वेस्ट करें, एनर्जी टाइम को इन्वेस्ट करें, मनी को तो इन्वेस्ट करने की बात आती है बट हमारे रिसोर्सेस को और हमारे ध्यान को भी इन्वेस्ट करने की बात आती है। और एक चीज जो हम सभी ने इस चीज को नोटिस किया कि इस पैंडेमिक के दौरान जब से पैंडेमिक शुरू हुआ उस समय पर अचानक जो हेल्दी लोग थे जिनको कभी मेंटल इलनेसेस से रिलेटेड कोई चीज समस्या आई भी नहीं थी वो लोग भी परेशान हुए, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरा और उस समय पर भी आपने बहुतों का मार्गदर्शन किया सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए। तो डायबिटीज या किसी भी भौतिक बीमारी पर आप कैसे देखते हैं कि कैसे मेंटल हेल्थ का प्रभाव पड़ता है, क्या इसके मायने हैं?
देखिए, ना पेट को मालूम है ना वेट को मालूम है कि उसको डायबिटीज है। एक और बड़ा चैलेंज जो डॉक्टर श्रीनिधि जब बात अभी डॉक्टर श्रीमंत अभी जब बात कर रहे थे श्रीनिधि जी आपसे पहले कि करीबन 70 मिलियन पीपल आर हैविंग द चैलेंज एंड नाउ 10 मिलियन पीपल हैव इट एवरी ईयर और 700 मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। इंडिया जो है वो इस समय करीबन 15 से 16% डायबिटीज की पूरी पॉपुलेशन को ऐड करता है, वो उसका हिस्सा है। कोई भी सेल जिसके की अंदर शुगर है ज्यादा, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर डायबिटीज है, उसे नहीं मालूम है कि मेरे अंदर ज्यादा शुगर आ रही है। जब हम खाते हैं तो उस समय हमें नहीं मालूम होता, मुंह को नहीं मालूम होता कि मैं मीठा खा रहा हूं या क्या खा रहा हूं। वो सारा कुछ जाके हमारे मन के अंदर अल्टीमेटली डिसाइड होता है कि मैं क्या खा रहा हूं। एक तरफ अगर हलवा पड़ा हुआ है और एक तरफ अगर मान लीजिए सैलेड पड़ा हुआ है, तो क्या चूज करना है ये डिसीजन मेरा मन लेता। और अगर मेरा मन गड़बड़ाया हुआ है तो अल्टीमेटली ये स्मॉल लिटिल डिसीजंस, जैसे कि बात चलती है कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि मेरे मन ने सही डिसीजन नहीं लिया कि जितनी मैं कैलोरीज खा रहा हूं और जितनी मैं खर्च रहा हूं उसके बीच में सही तालमेल है कि नहीं। मेरी शुगर लेवल अगर, और एक और बड़ी भ्रांति जो है वो ये है कि अच्छा शुगर लेवल है, शुगर तो हम सबको चाहिए क्योंकि वो तो एक तरह से फ्यूल है हमारी बॉडी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज में शुगर तो है, लेकिन जहां पे सेल्स के अंदर शुगर चाहिए वहां नहीं है, क्योंकि सही तरीके से इंसुलिन जो है, जो कि हमारी मेंटल स्टेट के ऊपर इंसिडेंटली डिसाइड करती है कि कितनी इंसुलिन निकलेगी, वो जब तक सही तरीके से हमारा मन उसको एक दिशा नहीं देता, तब तक हम अपनी शुगर लेवल्स को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते। और अल्टीमेटली यही देखा गया है कि धीरे धीरे वो जो गलत लाइफस्टाइल है कि मेरे को अंदर अपने होम्योस्टेसिस यानी एक नॉर्मलसी की स्टेट को कैसे बनाए रखना है उसके बारे में मैं ध्यान नहीं रख पाता। जो आपने बात की पेंडेमिक की, इस पेंडेमिक में व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि करीबन 20 करोड़ लोग इस समय इंडिया में जो कि मेंटल इलनेसेस से प्रभावित है, और उससे कहीं ज्यादा लोग अप्रोक्सीमेटली अनदर 20 करोड़, जो कि जिनको हम सब क्लिनिकल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो आज बीमार नहीं है लेकिन बीमारी की ओर अग्रसर है, या तो सो नहीं रहे हैं या ठीक तरह से खा नहीं रहे हैं या उनके संबंध खराब हैं या कॉन्स्टेंटली नेगेटिव विचार चलते रहते हैं या सैडनेस चलती रहती है। और वो सब जब चलती रहती है तो वो जब एक दिन थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर आती है तो वहां पे बीमारी हो जाती है। आज के समय में जैसा बात हुई है कि द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे लास्ट मंथ वॉज मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी एंड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होनी पड़ेगी मेरी मेरी अपनी हर व्यक्ति की, और उस समय नहीं जबकि बीमारी हो जाए, उस समय नहीं जब आपको डायबिटीज पता लग जाए, क्योंकि उसके बाद तो इंसान वैसे ही टेंशन में आना शुरू होता, उससे पहले कि हम उसको प्रिवेंट कर सके। और दूसरा एक बहुत बड़ा कनेक्शन जो है वो डायबिटीज का या दूसरी जो बीमारियां हैं जैसे हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है और मन की स्थिति का, वो ये है कि जब भी आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वो बढ़ते हैं, और क्या सही रूप से खाना है वो आप पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा लोग जिसको कि बिंज ईटिंग कहते हैं या स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, और उनका कंट्रोल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब वो एक तरह से बीमारी में फंस ही जाते हैं तो उसके बाद जब तक उनकी मन स्थिति ठीक नहीं होगी तो बाहरी रूप से दवाइयां सिर्फ देने से बात नहीं बनेगी। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन कि बाहरी रूप से मेडिकल रूप से उनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन साथ ही साथ रिलैक्सेशन के तरीके, मेडिटेशन के तरीके, अपने आप को स्टेबल करने के तरीके, अपने जो स्ट्रेसेस है उनको संभालने के तरीके भी साथ ही साथ ऐसा है, और वो सीखने के बाद ही वो पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर पाते।
जी, बहुत ही खूबसूरत बात अभी आप कह रहे थे, क्योंकि जब आप एक डॉक्टर, एक मेडिकल प्रोफेशनल इस बात को कहते हैं कि अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान देते हैं, अगर ध्यान देने की जरूरत है तो कहीं ना कहीं आपके मन से शुरुआत होती है। और जैसे आपने कहा कि अगर आप यहाँ पर एक बेहतर कंट्रोल रखते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो कंट्रोल बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है कि लोग वो कंट्रोल खो चुके हैं, और उसके लिए बहुत सारी वजहें लोग देते हैं, जैसे आपने अभी बिंज ईटिंग की बात कही। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हम बैठ गए हैं, हम खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमने कितना खा लिया है। और जैसे आपने कहा कि ये माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, ये चीजें हेल्प करती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया है, जो मेडिटेशन टीचर है। सिस्टर श्रेया को भी हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर उनके कार्यक्रम देखते हैं, उनकी प्रवचन मालाओं को अटेंड करते हैं। एक यंग मेडिटेटर होते हुए उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में मेडिटेशन के उपयोगिता के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की है। मैं सिस्टर श्रेया से बातचीत करना चाहता हूँ। मैं श्रेया में इनका स्वागत करता हूँ कि वो कार्यक्रम में आए। स्वागत है आपका सिस्टर श्रेया।
ओम शांति। थैंक यू।
एक चीज जो अभी डॉक्टर अवधेश जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सिस्टर श्रेया, वो कह रहे थे कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस और ये जो क्रियाएं हैं जो लोग यूजुअली आध्यात्म में फॉलो करते हैं, ये चीजें हेल्प करती हैं कि व्यक्ति अपने ऊपर एक बेहतर कंट्रोल ले आ सके। स्पिरिचुअल एंगल से, स्पिरिचुअलिटी इस चीज के बारे में क्या कहती है, फिजिकल हेल्थ के बारे में हो या अपने आप को सुदृढ़ बनाने के बारे में?
अभी तो हम सभी जानते हैं कि काफी सारी बीमारियां मन से भी जुड़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक है। और जैसे भाई ने भी कहा कि फूड का भी इसमें काफी लेना देना है, डायबिटीज में लाइफस्टाइल भी है, बट एट द सेम टाइम जो बीमारी है उसका कहीं ना कहीं कितना स्ट्रेस है, कितना फियर है, कितना वरी है, वो चीज भी उस चीज को इम्पैक्ट करती है। पैंडेमिक एक तरह से हम सबके लिए एक आईने का काम किया कि हम सभी अंदर से कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है वो हर एक के सामने अचानक आती है। किसी के सामने बीमारी की आई, किसी के सामने कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेकिन हर एक को समझ में आया कि हम कितनी स्टेबिलिटी से उसके साथ डील कर पाए। स्पिरिचुअल एंगल ये है कि हम अपनी आंतरिक ताकत को बढ़ाते जाते हैं। हम जितना मेडिटेशन करते हैं हमारी विल पावर इतनी बढ़ती जाती है कि परिस्थिति का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। परिस्थिति है, परिस्थिति बाहर से आती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बीमारी भी कई बार अचानक ही आ जाती है, जैसे भाई भी कह रहे थे पता ही नहीं चलता है, अचानक हम टेस्ट के लिए जाते हैं, हमें समझ में आता है। उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी विल पावर चाहिए, फिर उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कि हमें डाइट कंट्रोल करना है या लाइफस्टाइल चेंज करना है, या उससे भी पहले मुझे डायबिटीज हुई है, वो भी कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत रेजिस्ट करते हैं। तो उस एक्सेप्टेंस के लिए, उस जर्नी पर जाने के लिए बहुत विल पावर चाहिए। स्पिरिचुअलिटी हमें वो विल पावर देती है कि परिस्थिति के इन्फ्लुएंस में ना आकर अपनी स्वस्थिति का ध्यान देकर हम अपने से पूछ सके कि नेक्स्ट क्या करना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होकर के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सके, और बीमारी कॉन्शियस ना हो। एक होता है कई बार बीमार हो जाते हैं तो अंदर में फिर यही कॉन्शियसनेस होती है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, नहीं, मेरा शरीर बीमार है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं स्टेबल हूं, मैं खुश हूं, और मैं एक स्टेबिलिटी से अब लाइफस्टाइल में चेंज लेकर के आऊंगा कि इस बीमारी को क्रॉस कर सके। पर ये पावर तभी आती है जब हम रोज मेडिटेशन करते हैं। और दूसरी एक बात ये भी है जो डॉक्टर अवधेश भी अभी कह रहे थे कि बिंज ईटिंग आदि है, ये सब इसलिए भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में बहुत खालीपन है। पिछले दिनों भी एक रिसर्च में बताया कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनकी एक निशानी है कि वो शॉपाहोलिक होते हैं या वो बहुत ज्यादा खाते हैं। नाउ वन ऑफ द रीजन इज कि हम सिर्फ खाने से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं लेकिन एंटरटेनमेंट भी ले रहे हैं। हम कई बार कहते भी हैं खा के बहुत अच्छा लगा, कहीं कहेंगे हेवनली, आनंद आ गया, तृप्त हो गई, ऐसे ऐसे शब्द भी मुख से निकलते हैं। मतलब वी आर नॉट जस्ट टेकिंग न्यूट्रिशन बट वी आर ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ प्लेजर आउट ऑफ इट, एंड इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड देन आई यूज दीज थिंग्स टू फील गुड। तो बहुत प्रकार के एडिक्शन, चाहे खाने का है, चाहे शॉपिंग का है, ये भी इस चीज की निशानी है कि मेरा मेरे ऊपर बहुत कंट्रोल नहीं है। मैं जब थोड़ा समय पहले कॉलेज आदि में थी तो ये बात कई बार सुनती थी गांधी जी की कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अच्छी भी लगती थी कि हाई थिंकिंग हो, सिंपल लिविंग हो, पर पॉसिबल नहीं होता था। सुनने में अच्छा लगता था लेकिन सिंपल लिविंग, सिंपल फूड हैबिट, सिंपल कैसे सिंपलिसिटी आए। पर ग्रेजुअली स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद समझ में आया इट इज हाई थिंकिंग विच लीड्स टू सिंपल लिविंग। जब हमारी सोच एलिवेटेड हो जाती है, हमारी फीलिंग एलिवेटेड हो जाती है, हम इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं, फिर हमें कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। हम खाते भी हैं, घूमते भी हैं, पहनते भी हैं, लेकिन उस चीज की टेम्पटेशन नहीं है, एडिक्शन नहीं है, बहुत सेल्फ कंट्रोल में रह करके राइट डिसीजन ले पाते हैं। तो ब्रीफली यही कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी हमारी इनर पावर बढ़ाती है।
जी, थैंक यू सो मच सिस्टर श्रेया। मैं वापस डॉक्टर श्रीमंत साहू जी के पास वापस लौटना चाहता हूँ। ये चीज तो हम अभी समझ चुके हैं कि मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट होता है, बट डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू इस फील्ड में, डायबिटोलॉजी के फील्ड में इतने समय से हैं, उन्होंने इस पर बहुत सारी रिसर्च किए हैं, एक ऑनगोइंग रिसर्च प्रोग्राम को वो हेड करते हैं। ऐसे में मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, खासकर डायबिटिक लोगों में क्या प्रभाव उन्होंने देखा है डॉक्टर साहू?
जी श्रीनिधि भाई, डायबिटीज एंड मेंटल डिजीज दे आर ट्विन्स, आई कैन टेल यू, बिकॉज स्ट्रेस कॉजेस डायबिटीज एंड डायबिटीज लीड्स टू स्ट्रेस, दोनों जैसे कि ट्विन ब्रदर्स हैं। ना है 60% ऑफ द मॉडर्न डिजीज आर ड्यू टू स्ट्रेस। जो भी आज एनसीडीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हम देख रहे हैं दुनिया में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कैंसर्स एंड ब्रोंकियल अस्थमा, सो मेनी डिजीज जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, अणसंक्रामक बीमारियां, इसका मूल कारण स्ट्रेस है। तो जब कोई व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस होता है, उसके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं जिसको कैटेकोलामिन्स कहते हैं मेडिकल भाषा में, जिससे बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, धड़कनें बढ़ जाती है, बॉडी में बहुत बड़ा चेंजेस आता है, जिसके कारण लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, साथ साथ डायबिटीज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ये सब बीमारियां तो होती ही है, हम सभी देखते हैं। थोड़ा सा कोई एग्रेसिव हो जाता है, तुरंत धड़कने तेज हो जाते हैं, तुरंत एकदम उसका सांस तेज हो जाता है, ये तो फिजिकली दिखाई देता है। लेकिन जैसे किसी को डायबिटीज हुआ, शुरुआत में पता ही नहीं चलता है, और जब एक्सीडेंटली कुछ जाके चेक करता है किसी भी कारण से, जब पता चलता है डायबिटीज, फिर उसको इतना स्ट्रेस हो जाता है, अरे बाप रे मुझे डायबिटीज हो गया, सारा जीवन मीठा नहीं खा सकता हूं, और ये पूरा सारा जीवन दवाई खानी पड़ेगी, ये क्या हो गया मुझे, मेरे माँ बाप को नहीं है, मुझे क्यों हो गया। तो लोगों को पहले किसी भी कारण से स्ट्रेस होता है तो उनको डायबिटीज हो जाता है, और डायबिटीज जब हो जाता है फिर एकदम मन में बहुत प्रकार के, और शुरुआत में लोग तो प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन भी नहीं करते हैं, और जो जिसको जैसा जो मन में आया, जो जैसा बताया वो करना शुरू कर देते हैं, फिर एक दिन जब एकदम कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, फिर लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस और डायबिटीज, डायबिटीज एंड स्ट्रेस, ये दोनों जैसे कि ट्विन ब्रदर्स है, आपस में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए डायबिटीज को खाली मेडिकल मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, खाली दवाई से ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक उनका स्ट्रेस लेवल को हम ठीक नहीं करते हैं नहीं हो सकता है। इट इज माई ऑब्जर्वेशन, हमारे हॉस्पिटल में सारे ऑल ओवर इंडिया से क्या ऑल ओवर वर्ल्ड से पेशेंट, जिसका कहीं ठीक नहीं होता है, यहाँ मैं स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ हमारे हॉस्पिटल में बुलाते हैं हम, और यहाँ सवेरे उठा के उनको मेडिटेशन कराते हैं माइंड रिलैक्सेशन करने के लिए। 5 दिन में, यू बिलीव मी, कैसा भी पेशेंट आए उसके 5 दिन में शुगर 100% कंट्रोल हो जाता है, जिसका सालों से कंट्रोल नहीं है। मेडिकेशन तो सबको ही दे रहे हैं, लेकिन मैं भी कोई मेडिकेशन कोई आसमान से लाके थोड़ी दे रहा हूँ, इधर जो दुनिया में उपलब्ध है वही दवाई दी जाती है। लेकिन जब उनको मेडिटेशन हम सिखाते हैं, उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उसका लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस लीड्स टू डायबिटीज एंड डायबिटीज लीड्स टू स्ट्रेस, ये दोनों का जो साइकिल ब्रेक नहीं करेंगे, डायबिटीज की पैंडेमिक को कभी हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए आज की आवश्यकता है सबको माइंड रिलैक्स कैसे करें, मेंटल डिजीजेस कैसे बचें, ताकि हमारा फिजिकल उसका असर ना हो, वो भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
जी, मैं डायबिटीज के फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में आपके पास लौटना चाहूंगा, बट जैसे आपने कहा कि मेंटल डिजीजेस जो हैं उससे अपने आप को बचाने की भी आवश्यकता है, तो उसके लक्ष्य में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ डॉक्टर अवधेश जी से। जैसे डॉक्टर श्रीमंत जी बात कर रहे थे डॉक्टर अवधेश की, हम अपने आप को बचाएं, बट एक चीज जो आम जगत में देखने को मिलता है कि हम सबकी जिंदगी में स्ट्रेस एक आम चीज बन गई, हमें लगा है कि भाई सभी को स्ट्रेस है, यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चों को स्ट्रेस है कि होमवर्क का स्ट्रेस है, मुझे एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, असाइनमेंट का स्ट्रेस है। तो ऐसे में आप कहाँ देखते हैं डॉक्टर अवधेश कि कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को बिल्ड करें, उसे इम्प्रूव करें, या फिर अपने आप को बचाएं इन बीमारियों से?
देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल से ना रोल मॉडल्स हमें चाहिए जो कि स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सके। और आज की डेट में जहाँ पे कि टेलीविजन में डिबेट्स होती हैं, जहाँ पे एंकर्स भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जो उनके गेस्ट आए हैं तो जिस भी जगह से आए हूँ वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कोई उन्होंने बैटल नहीं जीत लेनी है वहां पे। आज के समय में जैसा आपने कहा कि ऑल स्टेटस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे उसके पेरेंट्स हैं, ऑफिस में काम करने वाला बॉस है या उसके नीचे जो जूनियर है, एवरीबडी सेज आई एम अंडर स्ट्रेस। सो टू एक्सेप्ट कि जो हमारे को ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं वो ह्यूमन बीइंग में तीन कॉम्पोनेंट्स है। एक है सोल, जो कि आत्मा कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, और दूसरी है जो दिखती है, जो कि फिजिकल बॉडी है, जिसके कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनके आपस में इंटरेक्शन हो रहे हैं। अगर हम ये समझ लें कि जो एनर्जी है वो माइंड के थ्रू हमारी बॉडी पे काम कर रही है, तो फिर हम सिर्फ बॉडीली टेक्निक्स को नहीं अपनाएंगे, सिर्फ मेंटल टेक्निक्स को नहीं अपनाएंगे, जो कि सोर्स है, जो कि एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, उसको सशक्त करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे सोल की जो कुछ पावर्स हैं कि हर चीज पे परेशान नहीं हो जाओ, संभालो हर चीज का, कोई भी छोटी चीज आए तो उसका सामना कर लो, भागो नहीं, या थोड़ा सा कंटेंटमेंट हो। सिस्टर श्रेया बात कर रही थी सिंपल लिविंग की, एट द एंड ऑफ द डे हम में से किसी ने भी 10 तरह की चीजें नहीं खानी है, सो एट द एंड ऑफ द डे जहां हम रहते हैं, जो हम खाते हैं, ऑल दोज आर सिंपल। बिकमिंग माइंडफुल ऑफ माई सेल्फ, माई ओन बिहेवियर्स, जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके साथ मेरे इंटरेक्शन, ये बहुत सारे पुराने प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग है जो कि हम एक तरह से रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो जब हम उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देंगे तो कई तरह के स्ट्रेस कम होने अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। मेडिटेशन टू मी एटलीस्ट इज अ प्रोसेस कि जहां पे कुछ देर में मैं बाहरी दुनिया से समेट के अपने आप को, अपनी चॉइसेस को, अपने जीवन के पर्पस को और अपने जीवन की डायरेक्शन को देख पाता हूँ। तो जब मैं वो सब देख पाता हूँ तो उसी में क्या मैं खा रहा हूं और क्या मुझे खा रहा है, किस स्थिति में सो रहा हूं, कितना सो रहा हूं और सोने के बाद कैसा महसूस कर रहा हूं, तो ये सब चीजें अपने आप को महसूस होनी शुरू होती हैं। एंड व्हेन दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, तो जो छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने स्ट्रेस के बारे में कहा, वो स्ट्रेस के जो कारण है वो अपने आप इंसान समझना शुरू कर देता है कि उनकी जरूरत नहीं है। और अगर आप उन चीजों को समझना शुरू कर देते हैं तो फिर ये आसानी हो जाती है कि आप कम से कम उस समय पर जबकि आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ना अपना तनाव बढ़ाए ना उनका तनाव बढ़ाए। अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ गई है, मेंटल प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे जल्द से जल्द अपने लेवल पर या किसी की मदद पर, इंक्लूडिंग डॉक्टर, इंक्लूडिंग मेडिसिन, जहां पर जरूरत है उसको ठीक करें। जो बात डॉक्टर श्रीमंत ने कही कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, एक्चुअली कई तरह की बीमारियां में पहला जो सिम्टम होता है वो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो भूख कम होना है या भूख बढ़ना है, नींद का नहीं आना है या नींद का ज्यादा आना है, वेट बढ़ जाना है या वेट कम होना है, क्योंकि माइंड जो है जब वो बहुत ज्यादा चल रहा होता है तो वो शरीर पर भी असर डालता है। और कई तरह की बीमारियां जो कि साइकोलॉजिकल हैं, जैसे कि पैनिक अटैक्स हैं, उनमें सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है एंड द पर्सन गोज इनटू हाइपोग्लाइसीमिया। उनको हम कहते हैं कि आप ज्यादा इस समय शुगर खाइए ताकि आप बेटर हो जाए। और कई बार जब लगातार हम तनाव करते रहते हैं तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो ये दोनों जो मापदंड हैं इनमें मेरे ख्याल से शरीर के पैरामीटर्स को तो डॉक्टर ही ज्यादा संभाल सकता है, लेकिन हम सब खुद अपने जो पैरामीटर्स हैं कि मेरी नींद कैसी है, मेरी भूख कैसी है, मेरे संबंध कैसे हैं, मेरा मन कैसा है, अगर हम उनको चेक कर सकेंगे तो हम प्रॉब्लम को आने से पहले रोक पाएंगे। और फ्यूचर में जब इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो हम सबको इन्वेस्ट ये करना पड़ेगा। आप साइकेट्रिस्ट की तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए, बहुत कम लोग हैं साइकेट्रिस्ट इतने पॉपुलेशन के लिए, 6000 साइकेट्रिस्ट इंडिया में है 20 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए जिनको के मेंटल इलनेसेस। तो मैं तो चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपना मन का पूरा हिसाब खुद रखे, विद लीस्ट कॉस्टली काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, एक्सरसाइज है. कई लोगों के लिए एक्सरसाइज इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन. तो अगर हम ये सब चीजें कर सकेंगे, अपने जीवन में रोज ला सकेंगे, तो माइंड के साथ अपने बॉडी का भी पूरा ध्यान रख पाएंगे.
बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर साहब, कि हम अपने माइंड और अपने बॉडी दोनों का ख्याल रख सकें. अक्सर बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई, क्योंकि हर एक बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर है, तो हेल्थ के लिए भी हमें अलग अलग डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है. बट आपने ये कहा कि ये दोनों एक साथ करने की आवश्यकता है. और जैसे डॉक्टर श्रीमंत भी कह रहे थे, ट्विन ब्रदर है. तो जो शरीर में बीमारियां देखने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं उसकी उपज मन से है. और अगर बीमारियां आती हैं तो उसका असर मन को करता है. सिस्टर श्रेया, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, जैसे अभी डॉक्टर अवधेश इस बात को कह रहे थे कि मेडिटेशन एक सिंपल चीज है, एक सस्ता और सरल उपाय है जो अपने आप को हेल्दी रखने के, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए है. तो आप क्या बेनिफिट्स देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर मेडिटेशन करता है तो उसके लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या चीजें स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लीमेंट करती है व्यक्ति के अंदर?
मेडिटेशन को अगर बहुत सिंपली डिफाइन करें तो वो ही है मेडिटेशन, माना अपने मन का ध्यान रखना और कुछ नहीं है. जैसे एक आर्टिस्ट अपने ब्रश का ध्यान रखता है, एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखता है, ऐसे एक जो मेडिटेटर है वो अपने मन का ध्यान रखता है. अब मन क्या करता है, हर समय सोचता है, थॉट्स क्रिएट करता है. ऐसे कहेंगे कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर थॉट्स चलते ही रहते हैं और हम उनको स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकते हैं. एक चीज जो बहुतों को लगता है कि ये थॉट्स अपने आप आते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो ये सबसे बड़ा एक आहा मोमेंट होता है, एक रियलाइजेशन होती है कि एक थॉट अपने आप नहीं आते, कि एक एक थॉट हम क्रिएट करते हैं और हमारे पास चॉइस है. क्योंकि ये भी चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई कहने में कि इतनी बड़ी बात है तो स्ट्रेस तो होगा ही, इतनी बड़ी बात है तो डर तो लगेगा ही, पर ये रियलाइजेशन नहीं है कि हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास चॉइस है. जैसे भाई जी कह रहे थे होमवर्क की बात है तो भी बच्चा कहेगा मुझे स्ट्रेस है, पर आप ये नहीं देखेंगे कि उसी होमवर्क में सबको स्ट्रेस नहीं होता, उसी बीमारी में सबको स्ट्रेस नहीं होता, उसी फाइनेंशियल क्राइसिस में सबको डर नहीं लगता है. क्योंकि अंदर की कॉमेंट्री क्या चल रही है वो डिफाइन करेगी कि हमारी फीलिंग क्या है. तो मेडिटेशन माना कॉन्शियसली राइट थॉट क्रिएट करना. मानो मुझे डायबिटीज डायग्नोस हुई है तो ये थॉट क्रिएट करना कि ठीक है मुझे डायबिटीज हुई है, लेकिन अगर थोड़ा सा डाइट चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, रिलेशनशिप ठीक करेंगे, ये सब ठीक करेंगे तो ये रिवर्सिबल है. और दूसरी कमेंट्री है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो हमेशा इतना ध्यान देता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी फैमिली में था, जेनेटिक था, अब मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा. तो वो जो प्रकार के थॉट्स हैं वो स्ट्रेस और फियर क्रिएट करते हैं. ये रियलाइजेशन आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट एंड आई हैव अ चॉइस एट एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट. और जो हम सोचेंगे वो हम फील करेंगे. तो जितना जितना हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं हम मन के मालिक बन जाते हैं. मेरा मन, मेरी सोच, मेरी फीलिंग और मेरे जीवन जीने का तरीका.
तो एक व्यक्ति का लाइफस्टाइल जो है वो एक्चुअल में खुद के कंट्रोल में है. अगर वो व्यक्ति खुद इस चीज को क्रिएट कर सकता है, अगर वो कॉन्शियसली उन डिसीजंस को ले सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर श्रेया, एक बहुत ही अच्छी बात दोस्तों हमने सुनी है आपकी कि हमारे हाथ में कंट्रोल है. ऐसा नहीं है कि बीमारी हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल जाना है, बट उसके लिए हमें कैसे डील करना है, क्या सोचना है, वो मेरे कंट्रोल में है. और अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ. हर एक व्यक्ति अलग अलग रिएक्ट करता है, तो मैं बेहतर रिएक्ट कर सकता हूँ, इन चीजों पर बेहतर रिस्पॉन्स दे सकता हूँ. डॉक्टर श्रीमंत, सिस्टर श्रेया जो बात कह रहे थे इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोग बेहतर कंट्रोल में आते हैं? क्योंकि आपने डायबिटीज के ऊपर जो रिसर्च आप करते हैं, पेशेंट्स को काम करते हुए देखते हैं, उनको मेडिटेशन सिखा के उनके ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ये कैसे असर करता है?
जी, इसमें जैसे मैं पहले बताऊंगा, डॉक्टर अवधेश शर्मा जो बता रहे थे एक्सरसाइज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं खुद प्रैक्टिकली इसका एक्सपीरियंस किया हूं. जब हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं और ब्रेन सेल्स दे सीक्रेट एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन, जो कि एक सेंस ऑफ वेलबींग, एक यूफोरिया सेंसेशन क्रिएट करता है, जो मेडिटेशन से भी होता है. मैं पहले एकदम डेली एक घंटा एक्सरसाइज करता था यंग एज में, तो जो मुझे फीलिंग होती थी एक घंटे के बाद, जब मैं राजयोग मेडिटेशन सीखा ब्रह्मा कुमार इसके पास आके, मेडिटेशन के बाद भी सेम फीलिंग, सेम थ्रिलिंग अनुभव होने लगा। तो देन आई कोरिलेटेड दिस की देखिए एक्सरसाइज से भी इतना बेनिफिट है। तो मैं सभी पेशेंट्स को ये कहूंगा कि एक्सरसाइज भी करें और साथ साथ जो राजयोग मेडिटेशन जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग सिखाया जाता है, आज अक्सर हमारे साथ सभी दुनिया में मेजोरिटी लोगों का जो थॉट्स है या तो नेसेसरी थॉट्स या अननेसेसरी थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स, हम पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम करते हैं क्योंकि सारे फीडबैक जो आता है, सवेरे आप टीवी देखो या अखबार पढ़ो या कुछ भी सुनो, ये सारा नेगेटिव आता है, तो जिसके कारण लोग पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट ही नहीं कर पाते। लेकिन राजयोग मेडिटेशन जिसमें इट इज एन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मन में कैसे, जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि डायबिटीज हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, इट इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज, आई विल चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई विल चेंज माई एवरीथिंग, इट इज विल बी ऑन माई कंट्रोल। सो दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कैसे क्रिएट करें हमें सीखना पड़ेगा। तो हमारे हॉस्पिटल में जो आते हैं, मैं रीइन्फोर्स, मैं पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट करना है लोगों के अंदर रीइन्फोर्स करता हूँ। तो रोते रोते लोग आते हैं, सब मुस्कुराते हैं, खुशी खुशी से जाते हैं, ऑटोमेटिक शुगर कंट्रोल हो जाता है। तो हमें सीखना पड़ेगा मेडिटेशन कैसे हमें सदा, सारा जीवन में कुछ भी हो जाए, हमारे थॉट्स को कैसे हम क्रिएट करें। लोग अक्सर करके यही सीक्रेट नहीं जानते, जब ये सीख जाएंगे तो नेचुरली देयर मेंटल हेल्थ विल बी ऑन देयर हैंड।
जी थैंक यू सो मच। दोस्तों हम ऑडियंस से सवाल लेंगे, जो हमारे दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू के फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पर, ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 90.4 FM पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सभी अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए, हम कुछ कमेंट्स लेंगे और साथ साथ कुछ प्रश्न भी हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे। हमारे पास लगभग 10 मिनट जितना समय होगा कि हम ऑडियंस के सवाल जवाब ले पाए। बातचीत को मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अवधेश के साथ में एक प्रश्न यही रखना चाहूंगा, जैसे अभी डॉक्टर श्रीमंत कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कि जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, मेडिटेशन से भी अच्छा महसूस करते हैं, ऐसा डॉक्टर श्रीमंत कहते हैं, नेचुरली उनका एक्सपीरियंस है, बट आप डॉक्टर हैं, मनोरोगों के विशेषज्ञ हैं, माइंड स्पेशलिस्ट हैं, तो आप बताएं कि क्या एक्चुअल में क्या होता है जब मेडिटेशन करते हैं तो व्यक्ति अच्छा कैसे महसूस करने लगता है।
इसके कई थ्योरीज हैं, पर जो बेसिक चीजें हैं उसमें ये कि पहली चीज, एंड स्पेशली अगर हम राजयोग के बारे में बात करें, क्योंकि मेडिटेशन कई तरह की हैं, कुछ लोग सिर्फ साइलेंट बैठना ही मेडिटेशन समझते हैं, कुछ एक लाइट की सोर्स को देखना, कैंडल को देखना, कुछ मंत्र को सुनना, उसको ही मेडिटेशन कहते हैं। पर बहुत सारी मेडिटेशंस के बारे में जानने का और खुद एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और उसके बाद करीबन 25 साल से राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहां पर वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में सोचने के ढंग को बदल पाए, उन थॉट्स के साथ जुड़े हुए इमोशंस को बदल पाए और उसकी वजह से आपके जीवन की चॉइसेस को बदल पाए, वो सशक्त रहेगी, लॉन्ग टर्म तक चलेगी और उसमें आपको चेंजेस हर लेवल पर दिखेंगे। अदरवाइज अगर आप थोड़ी देर के लिए कामली बैठ जाइए, सारे सोर्सेस आस पास के बंद कर दीजिए, फोन टेलीविजन ऑफ कर दीजिए, यू मे फील अ लिटिल रिलैक्स्ड। उसमें होता क्या है कि जब हम थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू होते हैं तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो किक इन करता है, वहां पे हमारी जो ब्रीदिंग है वो जैसे ही स्लो होती है, जैसे ही हम काम महसूस करते हैं, तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की वजह से हमारी शुगर्स, हमारी ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट रेट्स वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज करनी शुरू होती है, और जैसे जैसे हमारे विचार कम होने शुरू होते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़नी शुरू होती हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ थॉट्स अगर जो हैं, अगर मैं एक मिनट में कम सोच रहा हूं तो हर थॉट की पावर ज्यादा है, और उसी के कारण से जो मेरे शरीर के नेचुरल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो एंडोर्फिन्स हैं, चाहे वो दूसरे हार्मोन्स हैं, वो हमारे शरीर के सिस्टम्स हैं जो कि मन जो है उसको गाइड करता है, ताकि हम पॉजिटिव हेल्थ की तरफ बढ़े या नेगेटिव हेल्थ की तरफ। तो पॉजिटिव हेल्थ के जो सिस्टम्स हैं वो एकदम किक इन करना शुरू करते हैं, और इसीलिए जो अक्रॉस द वर्ल्ड कई तरह की शोध चल रही है अब, करीबन 20-25 साल से बहुत ज्यादा मेडिटेशन और योगिक प्रैक्टिसेस पे जो रिसर्च हुई है उसमें ये देखने में आया है कि इसकी वजह से हमारी शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, अगर आप बीमार हो भी जाते हैं तो नंबर ऑफ डेज जितने दिन आप बीमार रहते हैं और जो जिस लेवल तक आप बीमार रहते हैं और अगर आप हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो नंबर ऑफ डेज आप हॉस्पिटलाइज होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ इट हैज बीन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर हाई ब्लड प्रेशर, फॉर हार्ट डिजीज, फॉर डायबिटीज, फॉर टेंशन हेडेक्स, फॉर एस्थमास, फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन माइल्ड वंस। सिर्फ एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को क्योंकि बहुत सारे श्रोता हैं तो जरूरी हो जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर बहुत सीरियस डिप्रेशन है, सुइसाइडल आइडिएशन है या वो किसी तरह की बहुत सीवियर मेंटल इलनेस से गुजर रहा है तो अपने आप को साइलेंस में जाना और डीप मेडिटेशन करने की कोशिश ना करे, उसको अंडर गाइडेंस स्पेशली विद अ फिजिशियन करने की जरूरत है। साथ ही साथ डॉक्टर साहू ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो हमारी डायबिटीज लेवल कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ भी हो आप बिना डॉक्टर की मदद के या सलाह के अपनी दवाइयों को ना बंद कर दें, मीठा ना खाना शुरू कर दें कि चलो अब मैं मेडिटेशन भी करूंगा और शाम को जाकर जलेबियां खाना शुरू करूंगा, तो वो भी नहीं करें। तो वो भी अगेन देयर हैज टू बी अ बैलेंस, इट हैज टू बी अ प्रोसेस जो कि लंबा अरसे तक चलता है, वो एक जीवन जीने की कला बन जाए तो उसके बाद आपका शरीर भी इजीली चीजों को संभाल पाता
है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जब अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू करते हैं उनको लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा करने लगा हूँ तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ अब मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को। ये होता है अक्सर क्योंकि बहुत बार हम खुद के ही मास्टर हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम जो जानते हैं वो सब कुछ सही है, बट कभी कभार सही गाइडेंस लेना, सही मार्गदर्शन में अपने शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। मैं इस सवाल के लिए डॉक्टर श्रीमंत के पास वापस लौट रहा हूँ। खुर्शीद सतारा वाला हमारे साथ हैं जो YouTube से प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, जस्ट येस्टरडे आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटीज विच इज क्वाइट हाई, माय क्वेश्चन इज डायबिटीज क्यूरेबल और नॉट। ये प्रश्न पूछते हैं, खुर्शीद जी कहते हैं कि उनको कल ही डायबिटीज के बारे में जानकारी मिली है कि उनको डायग्नोस हुआ है डायबिटीज जो बहुत ज्यादा है, और वो पूछते हैं कि क्या डायबिटीज का कोई इलाज है या नहीं। खुर्शीद
जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के मन में यही आता है। देखिए, मैं आपको ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज इज ए मल्टीफैक्टोरियल डिजॉर्डर, एक कारण से कोई डायबिटीज किसी को नहीं होता है। अगर आप ओवरवेट हो, आपको स्ट्रेस है, बहुत टेंशन, स्ट्रेसफुल जीवन अभी समय बीत रहा है, और आप एकदम सेडेंटरी हो, आपके खान पान का कोई ठीक ठिकाना नहीं, कुछ भी खा रहे हो, तो ये सब जब आप चेंज कर देते हो डायबिटीज पूरा खत्म हो सकता है। खाली 10 किलो आपका वेट कम कर दीजिए, देखिए आपका एकदम शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। मैं हजारों पेशेंट को देखा हूं। तो सबसे पहले देखना है कि डायबिटीज किस कारण से आपको हुआ है। अगर ये टाइप 1 डायबिटीज है तो यूजुअली ये पूरा क्यूरेबल नहीं है आपको, क्योंकि आपके बॉडी में जो बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करता है और नष्ट हो गया है, तो आपको बाहर से सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आप लाइफस्टाइल गड़बड़ करके किए हो तो ये 100% जब ठीक हो जाते हो पूरा ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर गड़बड़ करोगे तो फिर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, क्या निमोनिया क्यूरेबल है? यस, आप एंटीबायोटिक ले लो पूरा ठीक हो जाओगे, लेकिन दोबारा आपको निमोनिया नहीं होगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं, फिर हो सकता है। तो ऐसे ही होता है, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, उनको लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, 2-3 साल के बाद मैसेज आता है पेशेंट्स का, जाके घर में जाके कहते डॉक्टर साहब मेरी सारी दवाई बंद हो गई, मैं तो एकदम 10 किलो 15 किलो मेरा वेट कम हो गया, मैं डायबिटीज से मुक्त हो गया, बधाई हो डॉक्टर साहब, मैं तो कांग्रेचुलेशन। फिर 2-3 साल के बाद फोन आएगा, डॉक्टर साहब फिर से 300 हो गया। बोले क्यों होगा? आजकल फिर से बाहर का खाना शुरू कर दिया, फिर से एक्सरसाइज छोड़ दिया, फिर से टेंशन आ गया, फिर आ गया। तो ऐसे ही डायबिटीज अगर इट इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज, आपकी लाइफस्टाइल अगर सदा सुधार करेंगे ठीक रखेंगे तो होगा ही नहीं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज कुछ एक्सेप्शन है, अगर आपके अंदर बीटा सेल्स पूरा बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है, इंसुलिन सीक्रेट होता ही नहीं है, तो आपको ड्रग लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लाइफस्टाइल के कारण अगर ये बीमारी आई है तो ये 100% जा सकता है। जब तक आप ठीक रहोगे, गड़बड़ करोगे तो फिर आ जाएगा।
जी बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक रखेंगे तो तब तक ठीक रहेगा। तो लाइफस्टाइल के साथ आपको अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस से जुड़े हुए दो सवाल हमारे दोस्त पूछ रहे हैं। नीतू हवेलिया जी हैं। नीतू जी हमारे साथ फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। वो कहती हैं कि फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ हाउ कैन मेडिटेशन हेल्प। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, यूट्यूब पे सुनीत परियानी जी प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। वो गुड इवनिंग सर कहते हैं, वॉन्ट टू चेंज बट कांट, स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा वो कहते हैं। मैं समझता हूँ सिस्टर श्रेया इस बात को पहले कह चुकी है, मैं उन्हीं के पास ये दोनों प्रश्न ले जाना चाहता हूँ। नीतू जी कहती हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मेडिटेशन कैसे हेल्प करे, बट मैं बदलना चाहता हूँ बट नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेस जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा सुनीत कहते हैं। सुनीत और नीतू के प्रश्नों का उत्तर दें।
जब तक हम समझते हैं कि सिचुएशन हमारे स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब तक हम हमेशा इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि सिचुएशन तो एक के बाद आती ही रहती है। इसलिए हमें लगता है कि अगर सिचुएशन आती रहती है, बड़ी छोटी कोई ना कोई बातें लगी रहती हैं, तो स्ट्रेस नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही अंदर में ये प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है कि सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मेरे थॉट की क्रिएशन रिस्पॉन्सिबल है, बात मेरे को स्ट्रेस क्रिएट नहीं करती है, लेकिन उस बात को देखकर मैं अंदर क्या सोचता हूँ वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो पहली चीज हमारे अंदर ये चेंज आएगा कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, हम स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग, कि सिचुएशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, टेक चार्ज, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सेकेंड चीज जो हम इमीडिएटली कर सकते हैं, अगर हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, क्योंकि अगर वो थॉट प्रोसेस स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, थॉट प्रोसेस फियर क्रिएट कर रहा है, अंदर जो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ना कि अब क्या होगा, डायबिटीज ठीक होगी नहीं ठीक होगी, या किसी परिवार में किसी को हो गई है तो भी जो अंदर की चिंता चलती है, तो थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए एक इजी तरीका है कि हमारे मन में ज्यादातर वही चलता है जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। माना सारा दिन में जो हम कंटेंट अंदर भरते हैं वही हमारे मन में क्रिएट होता है और वही धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर बनता जाता है। अगर हम कंटेंट ऐसा लेते हैं जो बहुत नेगेटिव है, जैसे आज न्यूज में अगर हम देखें, या हमारी वार्तालाप भी बहुत ज्यादा ऐसी है, घर में बात भी इस प्रकार की है, तो कंटेंट अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्रिएट भी नेगेटिव होता है और धीरे धीरे कैरेक्टर, फिर वो हम नेगेटिव पर्सनालिटी ही बनते चले जाते हैं। तो हर रोज थोड़ी देर के लिए, पहले 20 मिनट्स की सही, 30 मिनट्स की सही, कुछ ऐसा कंटेंट जरूर अंदर लेना है जो बहुत एलिवेटेड क्वालिटी का है। चाहे आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल एपिसोड देखते हैं, कुछ भी। लेकिन आज आप देखो, अगर हम कोई मूवी भी देखते हैं, 2 घंटे की भी हम मूवी देखते हैं, हमने वो कंटेंट अंदर लिया है, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी 1 दिन 2 दिन तक वो मन में चलेगी और वो शेयरिंग में जरूर आएगी। ये बहुत नेचुरल होता है, जो सुना देखा है वो शेयरिंग में जरूर आता है। इसलिए अगर हम एलिवेटेड कंटेंट अंदर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ संस्कार भी चेंज होने लगते हैं, जिससे फिर धीरे धीरे हम टोटली स्ट्रेस फ्री हो पाते हैं।
जी थैंक यू सो मच सिस्टर श्रेया। जैसे आपने कहा कि ये प्रैक्टिस करने से ये चीज बदल सकती है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं, मैं डॉक्टर अवधेश से भी यही बात पूछना चाहूंगा। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब, कि जब एक व्यक्ति मेडिटेशन या कोई ऐसा इंटरवेंशन ट्राई करता है, जब वो अपने अंदर ही परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, कितना दिन लग जाता है, कितना स्पैन लगता है एक मानसिक बीमारी से बाहर आने में या फिर कोई अच्छी चीज की आदत बनाने में? क्योंकि डॉक्टर श्रीमंत ये बात कह रहे थे कि भाई जब आप एक आदत बना लेंगे लाइफस्टाइल की, उसे बदल देंगे, तो वो बीमारी भी चली जाएगी, फिर आप वापस लौट आएंगे तो फिर वापस वो, जैसे आप मेंटल डिसीज में रिलैप्सेस देखते हैं, लोग अक्सर बिंज ईटिंग, तो लगभग पूरा वीक ठीक रहते हैं, वीकेंड आते ही फिर पता नहीं कहां से उनको पता नहीं चलता कि चिप्स का पैकेट ऑटोमेटिकली उनके सामने आ जाता है, टीवी के सामने बैठ जाते हैं, सारा खत्म हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर अवधेश के बारे में?
श्रीनिधि जी, लॉकडाउन में अभी तो वीकेंड भी नहीं रहे, तो पूरा वीक ही बिंज ईटिंग होती है, क्योंकि रोज ही आप अपने घर में है। मैं 4 P's से कहूंगा जो आपने बात पूछी, पेशेंस, परसिस्टेंस, पाथ एंड सीइंग द पॉइंट ऑफ लाइट। आपको लगातार वो चीज ये समझ के कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, करना पड़ेगा और सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज आपने YouTube पे एक वीडियो देखा, आपने कहा चलो ये मेडिटेशन ट्राई करते हैं, हफ्ते बाद का यार मजा नहीं आ रहा, ये हो नहीं रहा, कुछ चलो दूसरा ट्राई करते। सो नोइंग व्हाट यू कनेक्ट विद और उसके बाद उसको लगातार रोज अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के, और अगर आप ये सोच के कि इसका एंड पॉइंट कुछ समय के बाद मेरी जिंदगी में ये पॉजिटिव चीजें आएंगी, करना शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए आप एक अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसमें रोज कुछ टाइप करना शुरू करते हैं, कुछ देर के बाद अगर आप कंप्यूटर में देखेंगे कि आप जैसे ही वो खोलते हैं तो वो जल्दी आ जाता और समय के साथ साथ वो ऑलमोस्ट लाइक अ स्क्रीन सेवर बन जाता। हमारे माइंड के अंदर तो हम जो चीज रोज करना शुरू करते हैं उसका एक नया प्रोग्राम क्रिएट होता है और कुछ देर के बाद वो प्रोग्राम जो है वो एक तरीके, जैसे मान लीजिए आप एक जगह पर मिट्टी में छोटा सा गड्ढा बना दें, उसके बाद आप पानी कहीं भी डालेंगे वो उसी गड्ढे में से निकल आएगा। तो ऐसे ही जैसे आप रोज मेडिटेशन करते हैं, इट इज नाउ नोन कि उसके साथ साथ ब्रेन में भी कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, और उसकी वजह से ब्रेन के वो हिस्से जो कि पॉजिटिव इमोशंस को और पॉजिटिव तरंगों को, एनर्जीज को हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि करीबन 3 हफ्ते, कुछ लोग 21 दिन का साइकिल मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं करीबन 6 महीने, बट बाय एंड लार्ज व्हाट इट सीन्स कि जब आप उस चीज को लगातार करते हैं, और तभी मैंने पहले भी कहा कि अगर आप उसको समझ के साथ करते हैं किस तरह से आप पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं और उससे क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो कि राजयोगा का एक बेसिक प्रिंसिपल है, तो जब आप उसके साथ करते हैं तो आई वुड से अबाउट 3 to 6 months। और जो भी इस चीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आई वुड से कि आपसे पहले दूसरों को पता लगना शुरू होगा, आप शायद थोड़े कम टेंस होंगे, आप शायद थोड़े कम गुस्से वाले होंगे, आप शायद जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग कम होनी शुरू हो जाएगी। जब ऐसा शुरू हो तो इसका मतलब है कि आप में अब पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं। अब ये नहीं है कि अब उसको छोड़ दो क्योंकि हो गया परमानेंट, इट हैज टू बी डन एज ए लाइफ लॉन्ग थिंग, एंड वंस यू डू दैट तो फिर वो एक लगातार प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको एक चीज में मजा आता है तो आपके माइंड को भी मजा आता है वो चीज ढूंढने में, तो वो होना शुरू हो जाता है। और फिर स्थितियां चाहे बाहरी रूप से परेशानी वाली हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो आपको परेशानी नहीं देंगे क्योंकि अब आपका देखने का नजरिया बदल गया। दैट्स इज द पॉइंट व्हेन यू रियलाइज कि ओके थिंग्स हैव स्टार्टेड मेकिंग अ चेंज इन माय लाइफ।
जी मैं समझता हूँ, एक सवाल जो हमारे सामने अभी मैं पूछने ही वाला था मगर आपने उसका जवाब दिया है। शिल्पा जाजू लधा जी ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, ये प्रश्न पूछ ही रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके पिताजी को डायबिटीज है और वो हार्ट के पेशेंट भी हैं, मेडिकेशन लेते हैं बट उनको टेंशन लेने की आदत है, और हमारे घर में अगर हालात कुछ ऊपर नीचे होते हैं तो फिर उसकी वजह से भी उनके हेल्थ पर असर होता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम कहते तो हैं उनको कि वो हैप्पी रहें, वो खुश रहें तो उनकी जिंदगी ठीक रहेगी, वो योगा और वॉक तो करते हैं बट उनको ये परेशानी होती है। और जैसे डॉक्टर अवधेश ये बात कह रहे थे कि एक लंबा समय का अभ्यास चाहिए, और वो अभ्यास करने से आपके आसपास के लोग आपके अंदर वो पॉजिटिव चेंज नोटिस करने लगेंगे कि देखो इनको चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा है, इनको गुस्सा कम आ रहा है, या फिर चीजों को ये एक्सेप्ट करने लगे हैं, इनकी सोच ज्यादा नहीं चल रही है, तो उसके लिए एक अभ्यास करना पड़ेगा जैसे डॉक्टर उदेश ने कहा। अगला
एक सेकंड देखिए, जस्ट वन सेंटेंस शिल्पा जी के लिए, लेट द होल फैमिली स्टार्ट मेडिटेटिंग टुगेदर। कई बार हम वेट कर रहे होते हैं कि इनकी प्रॉब्लम है ये करें, whereas अगर सारे लोग करते हैं इट इज अ प्रिवेंटिव टेक्निक, और उससे सारे की सारी फैमिली का माहौल जब बदल जाता है देन एवरीबॉडी स्टार्ट्स एंजॉयिंग।
जी बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ शिल्पा जी आप इस बात को लेंगे पॉजिटिवली, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बीमारी अगर मम्मी पापा को है तो लगेंगे भाई ये बीमार हैं, इनको अपना इलाज खुद करना चाहिए, बट उनके डिजीज को ठीक करने के लिए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में भी आपने बताया। प्रवीण महाजन ये प्रश्न पूछते हैं, यूट्यूब से ये हमारे साथ जुड़े हैं, ये कहते हैं कि मेरे माता पिता दोनों डायबिटिक हैं, सो व्हाट आई हैव टू टेक केयर जिससे मुझे डायबिटीज ना हो। मैं समझता हूँ प्रवीण जैसे बहुत सारे युवा साथी होंगे जो अपने माता पिता को हेल्प तो करना ही चाहते हैं और साथ साथ वो अपना भी ध्यान रखना चाहते हैं कि उनको भी कोई ऐसी बीमारी नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटिक आनुवांशिक है, वो जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। डॉक्टर श्रीमंत इसका अगर उत्तर दे सकते।
देखिए, इट इज वेरी ट्रू, इट इज ए जेनेटिक डिजॉर्डर, परंतु मैं आज जो यंग जनरेशन में देख रहा हूं, पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं होते हुए भी यंग जनरेशन को हो रहा है, तो किसको फिर हम दोष देंगे? पहले हम कहते थे मेरे मां बाप को था ना, इसलिए मुझे हो गया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि पेरेंट्स को कोई बीमारी नहीं, लेकिन एकदम टीन एज में, यंग एज में बच्चों को डायबिटीज है, तो किसको ब्लेम करेंगे? इसको डायबिटीज को हम जेनेटिक डिजॉर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि मां बाप के जो लाइफस्टाइल है बच्चों की वही लाइफस्टाइल है। मां बाप 8 बजे उठते हैं तो बच्चे 9 बजे उठते हैं, मां बाप जो खाते हैं बच्चे वो खाते हैं, तो मां बाप को जो बीमारी बच्चों को वो बीमारी। लेकिन अगर कोई बच्चे अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर दें तो अपना मां बाप को अगर डायबिटीज है भी उनको नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रवीण जी कि आप ओवरवेट हो, अगर ओवरवेट हो आपका बॉडी वेट चेक करिएगा, आपका हाइट जितना सेंटीमीटर है उससे 100 माइनस कर दीजिए, जितना रहा उतना ही आपका आइडियल बॉडी वेट है। पहले अपना बॉडी वेट देखिए, अगर बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे मेरा विश्वास है आपको डायबिटीज नहीं होगा। दूसरी बात, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये WHO का कहना है जो सारे दिन में 3 घंटे से ज्यादा बैठता है कंटिन्यूअसली उसको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां होने का संभावना है। तो कंटिन्यूअसली सिटिंग हैबिट नहीं करना, अगर सिटिंग जब भी है तो हर घंटे में उठ के आपको डेली एक्सरसाइज करना ही है, आपको एक्टिव रहना ही है, अब सिडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आधा घंटा एक्सरसाइज तो करना ही है, हफ्ते में 150 मिनट्स करना जरूरी है, और बोथ एरोबिक एनरोबिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। खाली वॉकिंग इज नॉट सफिशियंट, खाली वॉकिंग करने से आपका लोअर लिम का एक्सरसाइज हो रहा है लेकिन आपका अपर लिम का, आपके शोल्डर जॉइंट, सारे जॉइंट्स का मोबिलिटी नहीं होती है, तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी चाहिए, एरोबिक एनरोबिक दोनों चाहिए। तीसरी बात, आप फूड हैबिट देखिए, घर में क्या खाते हैं आप, आपके मैक्सिमम कम कम खाइए, 5 बार खाइए, कम कम खाइए, 3 मेजर मील्स तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो लेते ही है, उस समय 1/3 पेट खाली होना चाहिए। हम एकदम आकंठ भोजन कर लेते हैं पूरा, अगर मनपसंद का कुछ है तो इतना खा लेंगे आ करने से दिखेगा, ऐसा नहीं खाना है। हमेशा हमारे थाली का 50% वेजिटेबल्स होना चाहिए, 50% तेल घी नमक जितना कम हो सके, क्योंकि इंडिया में 4-4 गुना खा रहे हैं, तो जब भी खाते हैं देखना है हमारे थाली में 50% देखने। अभी देखा गया है कि हम सभी राइस ईटर्स हैं, इंडिया डेवलपिंग कंट्री जितने हैं ज्यादा राइस, 70% राइस खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, इसको कम करें। 50% कार्बोहाइड्रेट से हमारा एनर्जी आए, 25% प्रोटीन से आए, 30% और फैट से 20% आए, तो दो ही जाके बैलेंस होगा। बैलेंस एंड वेजिटेरियन डाइट लीजिएगा, और साथ साथ बाहर का तो स्टॉप ईटिंग आउटसाइड, कोई बेकरी प्रोडक्ट, कोई एकदम मिठाई वगैरह जितना कम खा सकते हैं जितना अवॉइड कर सकते हैं, और जो भी जूसेस वगैरह ये सब नहीं लेना है, ये फट से शुगर शूट कर जाता है। आउटसाइड फूड बिल्कुल नहीं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, आपका थाली में 50% तक सब्जी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन कोई क्यूरेटिव अप्रोच नहीं है, मेडिटेशन इज ए टोटली प्रिवेंटिव अप्रोच। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बीमारी होगी नहीं, लोग सोचते हैं कि बीमारी आ जाए, स्ट्रेस आ जाए तो मेडिटेशन करेंगे, नहीं।
मैं समझता हूँ डॉक्टर श्रीमंत के कनेक्शन में थोड़ी परेशानी है, बट बहुत ही खूबसूरत बात कह रहे थे कि मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि हम बीमारी हो जाए तब मेडिटेशन करें, बट वो एक प्रिवेंटेटिव अप्रोच भी है कि हम पहले से मेडिटेशन इत्यादि करना सीखें जिससे बीमारी को हम आने से ही रोक सकें। और उन्होंने कहा एक्सरसाइज भी पहले से ही करना है, अपने थाली को चेंज करना है, भोजन जो करते हैं उसमें सब्जियों की मात्रा को बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा कि ज्यादा देर तक बैठना नहीं है, ऐसे बहुत सारे टिप्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। दोस्तों, हमारे पास वक्त बहुत कम है और लगभग हम 1 घंटे की समाप्ति पर हैं, तो मैं जाते जाते सभी से कुछ चीजें पूछ लेना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछे हैं, दोस्तों मैं सारों के सवाल नहीं ले सकता, मेरे पास स्क्रीन पर लगभग 20 के करीब सवाल हैं। तो तमन्ना जी सब प्रश्न पूछती हैं कि हम एंग्जाइटी को कैसे क्योर करें, ये प्रश्न पूछते हैं। और मैं ये एक और चीज ऐड कर देना चाहता हूँ डॉक्टर अवधेश के लिए कि ऐसी चीजें हैं जो लोग अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और हमारे घर में जो साथी हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबके मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों चीजें आप बताएं डॉक्टर अवधेश।
देखिए, एंग्जायटी तब शुरू होती है जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता। अगर एक बेसिक शिफ्ट कर लें कि शायद यूनिवर्स को मालूम है कि आज की डेट में मेरी क्या जरूरत है, तो जो नहीं मिला उसको ना मिलने की जो एंग्जायटी है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज, कोई भी बड़ी बड़ी बात भी हुई हो जिंदगी में, वो आज अगर मुड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी दिखेगी। अगर परसों भी कुछ हुआ था तो आज बहुत छोटा दिखेगा। तो जब इवेंट्स हो उस समय उनके साथ डील करें और उसके बाद आगे बढ़ जाए, फुल स्टॉप लगा दे। जहां तक हो सके कोई अपने पास साथी रखे जो कि आप ट्रस्ट कर सके, और अगर कोई नहीं मिलता तो ऊपर वाले से कनेक्शन बना दे। उसके साथ लाइन जो है वो आमतौर पे क्लियर मिलती है, वहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है, लेकिन उसके लिए वो लाइन क्लियर बनानी पड़ती है। तो वो अगर आप करके रखें और हर चीज को साक्षी समझकर कि ठीक है ये सब हो रहा है, इम्पोर्टेंट है, मुझे जो करना है वो मैं करूं, पर इसमें ज्यादा फंस ना जाऊं। एंड अल्टीमेटली वन ऑफ द थिंग्स दैट इज बीइंग शोन इज कि अगर जो आप कर रहे हैं जिंदगी में उसके लिए आपके पास ग्रेटिट्यूड है, और जो लोग जिनको आपकी मदद की जरूरत है, चाहे उसे सेवा कह लीजिए, अल्ट्रुइज्म कह लीजिए, वो अगर आप करते हैं, देन यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन नॉट ओनली अदर्स लाइफ। आपके आसपास वालों की तो मदद होगी लेकिन आपकी भी मदद होनी शुरू हो जाएगी। और लास्टली, क्योंकि समय की सीमा है, तो एंग्जायटी के लिए आई वुड से हम सबको एंग्जायटी कभी ना कभी जिंदगी में हुई होगी, लिखना शुरू कर दें क्या क्या ऐसे चीजें हैं। और हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई चार या पांच ऐसी चीजें होती हैं जिनसे उनको एंग्जायटी होती है, चाहे उनको लगता है कि कमी है किसी चीज की, संबंधों की, पैसे की, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी, जो भी है। और जो जो चीजें रिसेंटली आपको तंग करती रही हैं उनको नोट करना शुरू कर दें, उनका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना शुरू कर दें, और फिर उसके साथ डील करना शुरू कर दें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, समय समय पर, आई वुड नॉट इवन से मेडिटेशन वंस अ डे और ट्वाइस अ डे, लेकिन बीच बीच में, जैसे कछुआ होता है ना, तो जब वो काम करता है तो चलता है और उसके बाद वो समेट लेता है। अगर हम अपने मन को समेटना शुरू कर दें, चाहे थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी, तो वो एंग्जाइटी जो कि इकट्ठी होती रहती है, ओवरवेल्म हो जाती है, बीमारी होती है, फिर हम उसका कुछ करते हैं, उससे पहले उसको उस हद तक ना बढ़ने दें। देन यू कैन हेल्प योर एंग्जाइटी एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प अदर पीपल अराउंड यू बाय योर एग्जाम्पल, या क्योंकि आप सशक्त हैं इसलिए आप उनकी ज्यादा मदद।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवधेश जी का। डॉक्टर श्रीमंत साहब हमारे साथ लौटे हैं। मैं आखिरी में एक चीज पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक मिनट में आप ये चीज बताएं डॉक्टर साहब कि लोग क्या करें जो डायबिटिक हैं या डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को ऐसी चिंता होती है, तो सभी लोग क्या ऐसे सिंपल स्टेप्स करें जो टेक होम मैसेज हो उनके लिए?
सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम सभी को एनुअली एटलीस्ट एक बार हमारा शुगर चेक करें, खाली पेट सवेरे सवेरे, जब तक चाय भी नहीं पिए हैं, खाली पेट लेबोरेटरी में जाके चेक करेंगे तो एक्यूरेट होगा, क्योंकि ग्लूकोमीटर में कभी कभी अप डाउन होता है तो इसलिए उसमें एक्यूरेट नहीं दिखाता है। लेबोरेटरी में जाके साल में एक बार अपना फास्टिंग शुगर दे दे, फिर नाश्ता ठीक से करें, फिर करें। एक्चुअली नाश्ता करने के बदले अगर पोस्ट ग्लूकोज टेस्ट होता है, 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज उसका एक ग्लास पानी में उसका शरबत बनाया जाता है, उसको एम्प्टी स्टोमक किया जाता है और एक्जैक्टली 2 घंटे में फिर टेस्ट किया जाता है, उसको पोस्ट ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं। तो सवेरे सवेरे खाली पेट चेक करें फास्टिंग ब्लड शुगर, और लेबोरेटरी में जाके वही पोस्ट ग्लूकोज टेस्ट करें। खाली पेट अगर 100 से कम आता है तो नॉर्मल, 100 से 125 के बीच में आया था बॉर्डरलाइन, 125 से ऊपर हो गया तो डायबिटिक। इसी प्रकार पोस्ट ग्लूकोज में 140 के अंदर आया तो नॉर्मल, 140 और 200 के बीच में तो बॉर्डरलाइन, 200 के ऊपर गया तो डायबिटीज। सभी को साल में एक बार चेक करना जरूरी है, और जो डायबिटीज है, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, उनको हर महीना चेक करना जरूरी है। लोग करते नहीं है, मैं देखा हूं ये जो कोरोना के टाइम में लॉकडाउन पीरियड में 6-6 महीना 7-7 महीना कभी शुगर चेक ही नहीं किया, खा रहे हैं जो मर्जी सो मर्जी। तो चेक करना जरूरी है, नहीं तो यू नेवर नो, इट इज साइलेंट डिजीज। तो हर महीना चार बार चेक करें, एक दिन करें लेकिन चार बार, खाली पेट, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, खाली पेट सवेरे सवेरे 100 के आसपास रहे, खाने के बाद कभी भी करें, एक डेढ़ घंटे के दो घंटे के बीच में करें, अगर 150 के आसपास रहता तो नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को करना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक 24 घंटे में एक रूटीन बनाए, मुझे आधा घंटा एक्सरसाइज करना ही है। और यूट्यूब में हमारा डाउनलोड है वॉकिंग योगा बाय डॉक्टर श्रीमंत, आप डाउनलोड कीजिए, देखिए बहुत सुंदर, पूरा होल बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। आधे घंटे में आप दो घंटा वॉकिंग करके आएंगे, जितना बेनिफिट होगा पूरा होल बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो वो करें, वो भी भजन के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। तीसरी बात, बैलेंस डाइट रखें, कम कम खाएं, तीन मेजर मील्स तो लेना ही है, लेकिन बीच में 11-12 बजे कोई ना कोई फल खाएं, शाम को 4-5 बजे कुछ ना कुछ आप भुने हुए चने ले लीजिए, रोस्टेड सोयाबीन ले लीजिए या चना चाट ले लीजिए, कोई भी कुछ भी थोड़ा सा खाएं, कोई फ्रूट्स खाएं, तो कम कम 4-5 बार खाएं। और जितना हो सके मन को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन, अगर राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं 35 साल से, तो इसका जो बेनिफिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए हम राजयोग मेडिटेशन करें। तो ये चार बातें, एनुअल चेकअप, अगर डायबिटिक है तो एवरी मंथ चेकअप, बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट, थर्ड रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये चार बातें अगर कोई प्रैक्टिकल जीवन में करे तो ही कैन प्रिवेंट ऑल्सो, अगर डायबिटीज है तो भी वो कंट्रोल करके रख सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा फिर भी ग्लोबल हॉस्पिटल हमारा है ही सेवा के लिए, आप सभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं गाइड भी कर सकता हूं। और ये लॉकडाउन पीरियड थोड़ा सा ठीक हो जाए सभी, फिर तो यहाँ हमारा रेगुलर कैंप चलता ही है, सभी को मोस्ट वेलकम, आइए, यहाँ का स्पिरिचुअल एनवायरमेंट का डायबिटीज से दूर रहिए, ये मेरी शुभकामना है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बड़ी सुंदर बात आपने कही कि हम खुद अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और ये रेगुलर चीजें हर कोई कर सकता है, ऐसा मैं समझता हूं। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सी बात हमने सुनी डॉक्टर श्रीमंत से अभी अभी, और डॉक्टर अवधेश से भी हम सभी दोस्त संपर्क कर सकते हैं, अगर किसी को भी उनसे संपर्क करने की आवश्यकता है तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं socialmedia@brahmakumaris.com पर, यहाँ पर आपको अधिक जानकारी मिल सकती है। डायबिटीज के प्रोग्राम के बारे में, डॉक्टर श्रीमंत के बारे में आप यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं, और ग्लोबल हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल्स पर भी आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। जैसे मेडिटेशन के बारे में हमारे दोनों डॉक्टर्स ने बात कही कि दिन भर में मेडिटेशन को एक लाइफस्टाइल बना लेना, उसके बारे में डॉक्टर अवधेश कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि कुछ ही समय के लिए करना है, पर दिन भर में बहुत बार मेडिटेशन के ये छोटे छोटे बाइट्स आप ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर श्रीमंत कह रहे थे कि हम खाना भी ज्यादा बार खाएं पर थोड़ा थोड़ा खाएं, तो ऐसे ही मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में भी डॉक्टर श्रीमंत ने कहा, उसके बेनिफिट्स हमें गिनाए। मैं सिस्टर श्रेया से आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक चीज, एक टेक होम मैसेज हमारे दोस्तों को कहना चाहें तो क्या बात होगी, और फिर उसके बाद हम आपके साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम सबको मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराएं चंद मिनटों के लिए।
दोनों ही डॉक्टर्स ने हमें बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सुनते सुनते मुझे आ रहा था कि इस बार क्योंकि वर्ल्ड डायबिटीज डे 14th को है और 14th को दिवाली भी है, और ये प्रोग्राम हमने दिवाली के बहुत नजदीक किया है, इन दिनों में सभी अपने घर की खूब सफाई कर रहे होते हैं, घर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी करनी है, क्योंकि कई बार बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो मन में जो बातें पकड़ के रखी होती है उनसे भी हो जाती है। हम प्रेजेंट में ना रहकर बहुत सारी पास्ट की बातें पकड़ी होती हैं या फ्यूचर की बहुत चिंता होती है, तो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और पास्ट की कोई भी बातें हम भले कह देते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा तो मुझे बहुत दुख मिला, पर धीरे धीरे जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते तो ये भी समझते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमने उसके बात को इतना समय पकड़कर अपने मन में रिपीट करके, जैसे कोई ने एक स्क्रैच हो उसको अपने मन में रिपीट कर करके आज एक जख्म बना लिया, और वो जो जख्म है उससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली हमारे शरीर को जाती है, जैसे डायबिटीज और कई सारी बीमारियां भी होती हैं। केवल हमारी फिजिकल हेल्थ ही नहीं उससे खराब होती, लेकिन हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं। वो वाइब्रेशन मेरे मन को भी अच्छा फील नहीं कराता, खुश नहीं रहते, शांत नहीं रहते, हल्के नहीं रहते, क्योंकि गलत सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा महसूस नहीं करते। फिर इम्यूनिटी भी लो होती है, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आती रहती है। तो एक चीज जो हम कर सकते हैं, जो परमात्मा हमको हमेशा कहता है, बीती सो बिंदी, जो पास्ट हो गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। पास्ट से सीखना जरूर है लेकिन पास्ट को पकड़ करके नहीं रखना है। कोई भी अगर आपके सामने कोई सीन है जो बहुत डिस्टर्ब कर रही है उसको सामने लाएं। एवरी सीन इज अ लेसन इन डिस्गाइज। एवरी सीन, हर सीन को सिखाने आती है। कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती है, कोई हमारी ह्यूमिलिटी बढ़ाती है, कोई हमारी टॉलरेंस बढ़ाती है, कोई हमारे रिश्तों को मधुर करती है। क्या सिखाने आई थी उससे सीखें और उसको फुल स्टॉप लगाएं। और अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो बात करना शुरू कर दें। जितना यहाँ हल्के होंगे उतनी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और अगर हल्के होंगे तो अगर कोई बीमारी है भी तो हीलिंग फास्ट हो जाएंगे। अगर मन हमारा ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर कितनी भी दवाई दे, कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट हो, हम अपनी हीलिंग को रोक देते हैं। तो जितना हम हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, पीसफुल रहेंगे तो हीलिंग भी फास्टर होगी और बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाएगी।
थैंक यू सो मच सिस्टर श्रेया। और मैं समझता हूँ ये टेक होम मैसेजेस हमारे सभी एक्सपर्ट से आज मिले हैं वो हम सबको हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए काम आएंगे। और यही सारी चीजें हमारे हाथ में है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स लिखे हैं, मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपके कमेंट्स और आपका प्यार इतना है कि उसके लिए भी शायद आधा घंटा और लग जाए। मगर आपके कमेंट्स को स्क्रीन पे शेयर किया जाएगा। बट आप सभी के तरफ से, हमारे सभी सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों की तरफ से, मैं डॉक्टर श्रीमंत का, डॉक्टर अवधेश जी का और सिस्टर श्रेया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो समय निकाल कर आए और इतनी अच्छी जानकारियां हम सबको दी, एक हेल्दी दिवाली मनाने के लिए हमें प्रेरित किया ताकि हम एक अच्छी शुरुआत कर सके इस दिवाली। हमारे हेल्थ को अच्छा हम रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने फिजिकल हेल्थ को और अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। आखिरी में जाते जाते मैं सिस्टर श्रेया से अनुरोध करता हूं कि कुछ मिनट हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराएं। जैसे डॉक्टर अवधेश कह ही रहे थे कि मेडिटेशन के छोटे बाइट्स हम प्रैक्टिस करें दिन भर में, तो चंद मिनटों के लिए, दो तीन मिनटों के लिए से ही आप मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के साथ इस प्रोग्राम को एंड करें। सिस्टर श्रेया,
कुछ पलों के लिए हम सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, बॉडी को रिलैक्स करें और अपने आप को चारों तरफ से डिटैच कर लें। इस मोमेंट में एक थॉट क्रिएट करें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, आई एम हेल्दी। हो सकता है मेरे शरीर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो लेकिन आई एम सेपरेट फ्रॉम माय बॉडी एंड आई कैन हील माय बॉडी। मैं अपनी स्टेबिलिटी से अपनी बॉडी को हील कर सकती हूं। अभी अभी महसूस करें कि मेरे से प्योर वाइब्रेशन मेरे बॉडी के हर अंग तक जा रहा है। मेरा हर थॉट, मेरा हर प्योर संकल्प ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करता कि मेरी बॉडी स्वस्थ होती जा रही है। मालिक बनकर अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल से चलाएं। डिटर्मिंड थॉट लें कि आज से जो खाना है, जो मेरे शरीर के लिए हेल्दी है, वो ही खाएंगे अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे। कुछ समय एक्सरसाइज करनी ही है, क्योंकि जीवन में हेल्दी बॉडी भी चाहिए और हेल्दी माइंड भी चाहिए, तो ही सच्ची खुशी का अनुभव होगा। सो फ्रॉम टुडे आई विल टेक केयर ऑफ माई माइंड, माई थॉट्स, माई फीलिंग्स, माई डायट, माई लाइफ स्टाइल एंड माई बॉडी। ओम शांति।